आयत नंबर 116। वकालु तखज अल्लाह वलदा, और उन्होंने कहा कि बना ली अल्लाह ने औलाद। किसने किसके लिए कहा? यहां लफ्ज देखिए, इत्तखज अल्लाह वलदा, पहले जरा इसके अंदाज को समझिएगा। वो कहते हैं कि अल्लाह ने पकड़ी है या बनाई है औलाद, मतलब ये कि है कोई नहीं, ये कहते हैं तो कह लें, बना रखा है, ले रखा है, मतलब क्या है कि अल्लाह का बेटा है कोई नहीं, लेकिन इन्होंने कह दिया। किसने कहा था? तीनों ने कहा था जिनका सबक के शुरू में जिक्र था। कैसे? मुशरिकीने मक्का कहते थे कि फरिश्ते अल्लाह की बेटी हैं। आप सूरत नाहल में ये बात पढ़ेंगे इंशाल्लाह डिटेल से। यहूद कहते हैं उज़ैर इब्नुल्लाह, सूरत तौबा में पढ़ेंगे आप ये बात। और नसारा क्या कहते हैं? ईसा अल्लाह का बेटा। ये तो आपको बार बार मिलेगा, सूरत माईदा में बहुत डिटेल से मिल जाएगा। हर गिरोह ने अल्लाह के लिए कोई ना कोई रिश्तेदारी कायम कर दी। और आपको पता है कि ये अकीदा जो है आज यहूद नसारा को भी आपस में लड़ाता है। क्रिश्चियंस का एक फिरका है, एडॉप्शनिज्म कुछ इस तरह का उनका नाम है, कहते हैं कि अल्लाह ने बेटा अडॉप्ट किया ना उस बिल्ला। इस बुनियाद पे इनका अकीदा बना और आपस में ये लड़े और झगड़े और खराबियां हुई, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि नहीं। दूसरी बात, ये जो वलद है ना, मैं आपसे पूछ सकती हूँ एक बात। देखिए, आप उर्दू में कहते हैं वालिद, वालिदा, वालिदैन, नाम तो एक ही है ना। वलद लफ्ज क्या है? इसम जिन्स है। लड़का लड़की जमा और वाहिद सब के लिए इस्तेमाल होता है। अरबी जुबान में वाहिद, जमा और मुजक्कर मुअन्नस होते हैं ना, जैसे उर्दू के हैं। कुछ लफ्ज ऐसे हैं वो एक होकर जिस पे मर्जी रख लें। और आपको ये बात मैंने कहां बताई थी? गाय के वाक्य में। बकर लफ्ज क्या है? मेल गाय, फीमेल गाय, एक गाय, बहुत सारी गाय। तो वलद एक बेटा, एक बेटी, बहुत सारे बेटे, बहुत सारी बेटियां, सब पे इस्तेमाल होता है, यानी इसम जिन्स कहते हैं इसको। सुभानहु, वो तो इससे पाक है। बल्लहु मा फिस समावाति वल अर्दी, बल्कि उसके लिए जो आसमानों और जमीन में है। कुल्लु लहु क़ानितून, सब उसके आगे फरमाबरदार है। अल्लाह ताला ने उनके इस दावे को रिजेक्ट कर दिया। क्यों? सवाल पैदा होता है कि अल्लाह का बेटा क्यों नहीं है। पहली बात है कि बेटा कमजोरी की अलामत है। बुढ़ापे में जब हम कमजोर होते हैं तो हम कहते हैं कि चलो बच्चा हो जाएगा तो हमें पकड़ेगा, कोई बुढ़ापे में हमें पानी ही पिला दे, कोई हमारी छड़ी पकड़ लेगा। नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह ताला को तो ऐसी चीजों की जरूरत नहीं। दूसरी बात देखिए कि औलाद की ख्वाहिश होती है और अल्लाह ख्वाहिशों से पाक है। तीसरी बात यह है कि औलाद का होना, माने ना माने, आपकी मौत का पैगाम है। जिस दिन आपके घर में एक बच्चा आ जाए, खामोश इशारा है अल्लाह का कि एक नया फर्द दुनिया में आया है, तो अब एक फर्द जाना है और वो तुम हो। अल्लाह ताला इन सारी चीजों से पाक है, उसको इसकी जरूरत ही नहीं है। और अल्लाह ताला कहते हैं कि ये बातें करते हैं इनको कहने दो, नहीं। वकालत यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, वकालत नसारा अलमसीह इब्नुल्लाह, ज़ालिक कौलुहुम बिअफवाहिहिम, सूरह तौबा की गालिबन आयत नंबर 30 है ये। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है, हदीस कुदसी है, इब्ने आदम मुझे झुठलाता है हालांकि इसके लिए मुनासिब ना था, इसने मुझे गाली दी हालांकि इसको ये सूट नहीं करता। कैसे झुठलाता है? ये कहकर कि मैं दोबारा जिंदा करने पे कादिर नहीं हूं, और गाली देना क्या है कि मेरी औलाद और मेरी बीवी बनाता है। ये सही बुखारी की रिवायत है 4482 नंबर की। तो याद रखिए कि लोग अल्लाह के बेटे करार देते हैं और अल्लाह उनको रिस्क देता है। बुखारी की एक और रिवायत में आता है, वो मूसा अलैहिस्सलाम से, कि तकलीफ ने बातों को सुनकर सब्र करने में अल्लाह से बढ़कर कोई नहीं है, क्योंकि लोग उसकी औलादे बनाते हैं और वो उनको माफ भी करता है और उनको रिस्क भी देता है। तो लिहाजा कभी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। लम यलित वलम यूलद, वो पाक है और ना उसकी कोई बीवी है ना कुछ है। सुभानहू, किस चीज से वो पाक है? हर ऐब से पाक है और औलाद से पाक है, और कोई उसके साथ शरीक नहीं है। फिर एक आखिरी बात देखिए जो आखिर वाले में, बल्लहू माफिस समावाती वलर्द। हम कहते हैं औलाद होगी बड़ी फरमाबरदार होगी, होती है? आज तो नहीं होती। अल्लाह कहते हैं तुम्हारे बच्चे हैं पर तुम्हारी बात नहीं मानते, मेरे बच्चे नहीं है। बल्लहु मा फिस समावाती, कायनात की हर चीज उसके हुक्मों पे चलती है, सब उसके ममलूक है, उसके मुख्ताज हैं। वो जिस तरह चाहे पहाड़ों को खड़ा कर दे, जमीन को बिछा ले, आसमान को फैला दे, उसको बच्चों की क्या जरूरत है। कुल्लु लहु क़ानितून, क़नूत लफ्ज़ समझिए, आप पढ़ते हैं दुआ क़नूत, ये वही लफ्ज है। तीन चीजें होती हैं क़नूत में, दवाम, आजजी और खामोशी। क्या मतलब है? दवाम कहते हैं एवरलास्टिसिटी, हमेशा करना। मसलन आप एक दिन किसी की खिदमत कर दें, अगले दिन ना करें, फिर तीसरे दिन कर दें, ये कनूत नहीं होगा। कनूत के हमेशा करें। दूसरी बात है हिदमत भी करें फिर आजिज भी रहें, आजिजी, और उसके साथ ही साथ सुकून का इजहार है, यानी सारी कायनात अल्लाह ताला के आगे। और अगर इस कनूत को देखना है ना तो पहाड़ों की दामन में जाके देखिए कितनी खामोशी होती है, कैसे झरनों की आवाजें आती हैं और लगता है ये सब अल्लाह के आगे हैं। बदी उस समावाती वाला अर्थ, पहली दफा पैदा करने वाला आसमान और जमीन को। बदी का लफ्ज बदा से है, बिदत का लफ्ज सुना है आपने, इसी से पहली दफा पैदा करना है, ये खालिक ही। लेकिन खालिक क्या होता है, मट्टी थी, अल्लाह ने आपको पैदा कर दिया मट्टी से। बदी वो होता है जो बगैर किसी टेक्सचर के यूज किए नई चीज बनाए, जैसे मूजिद, या आप कह लीजिए नई चीज, इन्वेंटर लिखिए वो बहुत सही रहेगा इसके लिए लफ्ज, के पहले कुछ भी नहीं था अल्लाह ने आपको बना दिया। और बिदत को फिर बिदत क्यों कहते हैं, कि नबी सल्लम ने वो काम नहीं किया था लेकिन आपने शुरू कर दिया, कोई उसका पीछे से नहीं। अच्छा बिदत का ऑपोजिट क्या है, सुन्नत। शाबाश, सुन्नत को सुन्नत क्यों कहते हैं, पुरानी होनी, सन्ना या सुन्नू गलने सड़ने को कहते हैं, यानी सुन्नत है असल में ऑथेंटिक, बिदत नई चीज है। और दीन में नई नई पुरानी चीज अच्छी होती है। वैज़ा कदामरन फइन्नमा यकूलु लहू कुन फयकून, उसका इरादा जब किसी काम का होता है तो कुन कहता है और वो काम हो जाता है। आज लोग कहते हैं बिग बैंग से ये दुनिया बनी, देखिए कायनात अल्लाह ने पहली दफा जब बनाई तो कैसे बनी होगी। मैं अक्सर ये बचपन में सोचती थी कि अल्लाह ताला आपको ख्याल कैसे आया था आसमान बनाने का। हम तो कहीं कोई कपड़ा देखें फिर उसकी डिजाइनिंग सलाह सी मिलती जुलती अपनी मर्जी से कर लेते हैं ना, अल्लाह को कैसे ख्याल आया सूरज का, चांद का, सितारे का, इसलिए कि वो बदी है। बगैर आमदिन तरऊ नहा, सूरत रात में आप पढ़ेंगे, आसमान को बगैर सतूनों के खड़ा कर दिया। तो अल्लाह ताला अपनी कुदरत बताता है कि मुझे औलादे नहीं चाहिए, मुझे मसीह नहीं चाहिए, मुझे नहीं, मैं तो वो हूँ जो कुन कहता हूँ और काम हो जाता है। अच्छा ये लफ्ज कुन को भी महसूस कीजिए कि कहा कुन, कॉल है ना। अब मैं बोल रही ना, अगर आप अपने मुंह के आगे हाथ रखें, अब बोलते हुए मैं बोल रही ना तो मेरे मुंह से हीट निकल रही है, हम बोलते हैं ना, वल्लाहु आलम हम इस बात को बस मानते हैं। लेकिन बाज कहते हैं कि जब हम बोलते हैं तो एनर्जी निकलती है ना, तो जब अल्लाह ने कुन कहा होगा तो कितनी एनर्जी ना निकली होगी, और वही बिग बैंग बना और उससे चार डायमेंशन एनर्जी और टाइम एंड स्पेस बना और कायनात फैल गई। अल्लाह ने उससे बेस्ट, उसके लिए क्या मुश्किल है। असल बात यह कि जा कदा अमरन, अब यहां रुक के दुआ करें, अल्लाह मेरा भी को रुका हुआ काम कर दे, तूने कुन कहना है मेरा काम हो जाना। कोई मांग लें, कोई खौफ है दिल में वो निकाल दें, कोई बीमारी है उससे निजात मांग लें, कोई औलाद का गम है, बच्चों का, बड़ों का, कुन फयकून का मालिक बैठे बैठे आपकी दुआ कबूल कर सकता है। और हमारी एक साथी याद आ जाती है मुझे इस आयत पे, ये सबक पढ़ के घर गई और उनकी बच्ची लेबर में थी, बड़ी तकलीफ थी, डॉक्टर्स ने कह दिया कि ऑपरेशन होगा, तो कहती है चूंकि नई नई बातें सुन के गई हुई थी, वहां बाहर बैठ के उसने दुआ शुरू कर दी कि अल्लाह तू तो कुन फया कुन का मालिक है, मेरी बच्ची पर रहम कर दे, आसानी कर दे। कहती मैंने रो रो के दुआ शुरू कर दी तो फौरन डॉक्टर आ गया कि अल्लाह ने बच्चा कर दिया बगैर ऑपरेशन के। तो वो अपने दिल को कहती है कि मैंने ही आयत इतने यकीन से मांगी थी तो मुझे लगता है उस वजह से ऑपरेशन छूट गया। अब आप बताइए लोग इसको वजीफा बना ले, बच्ची के लेबर पेन में माँ 100 दफा यह जुमला पड़ेगी तो फिर होगा, तो माँ को पता ही नहीं कि कुन फया कुन का मालिक क्या है, तो फिर तो बात नहीं बनेगी ना। ये वजीफे हमेशा ऐसे ही बनते हैं, इसलिए अब आप ये वजीफा आगे ना किसी को बताइएगा, खुदा के लिए पता चला कि आपने लोगों को इस काम पे लगा दिया। अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक के साथ महसूस करें, फिर आपको पता चलेगा कि ये सारा कुछ होगा। और फिर वकाल अल्लज़ीना ला यालमूना, फिर उन लोगों ने कहा जो नई इल्म रखते, देखिए आज ला इल्मी की बातें हो रही हैं, लौला युकल्लिमुन अल्लाह, हमसे क्यों नहीं कलाम करता अल्लाह। एरोगेंस देखिए, बड़ाई, उजब, कहते थे हम बड़े, हमें आके बताए अल्लाह खुद, जैसे आप कहें सदर ओबामा आके हमें खुद बताए फिर मानूंगा कि रेड लाइट पे रुकना होता है, तो दुनिया में तो आप नहीं करते, लेकिन इसमें उनकी रौनत है, बड़ाई है। औतातीन आया, या आए हमारे पास कोई निशानी, जब तब से सलाम उनको कोई दीन का हुक्म देते तो कहते कौन कहता है तुम्हें, कहा जिब्राइल आए हैं मेरे पास, नहीं जिब्राइल से कहना हमें खुद आके के, नऊज़ु बिल्लाह नबी सल्लम पे शक करते, कहा कज़ालिका क़ाल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम मिस्ल क़ौलिहिम, इसी तरह कही थी बात इनसे पहले कुछ और लोगों ने भी। मैं आपसे पूछ सकती हूँ ये किसकी तरफ इशारा है, किसने कहा था कि अल्लाह हमसे खुद कलाम करे, पढ़ चुके हैं आप लोग, बनी इसराइल के 70 सरदारों ने, तूर पे खड़े होके कहा कि हम अल्लाह को अब खुद देखना चाहते हैं, वही बात है बिल्कुल। तशाबहत कुलूबहुम, मिलजुल गए उनके दिल, शुबा पड़ गया, यानी इनकी बातें आपस में बहुत सिमिलेट हो रही हैं। कद बैयन्नल आयात लिकौमी यूकिनून, बेशक बयान कर दी हमने आयतें उस कौम के लिए जो यकीन रखती है। क्या बताया इस आयत में अल्लाह ताला ने कि पहली बात यह है कि ला इल्म लोग जो होते हैं वो अल्लाह की कदर नहीं पहचानते। याद रखिए, असल इल्म आपके दिल में अल्लाह की बड़ाई और अपना छोटा होना डाल देगा। जब हमारे दिल में अल्लाह की बड़ाई नहीं होती ना, तो हम अल्लाह को बिल्कुल एक थर्ड पर्सन के तौर पर अपने ऊपर लेते हैं। अल्लाह ताला यही यहाँ रोकते हैं कि ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये सब ने की, यहूद ने भी की, नसारा ने भी की, और आज के कई मुसलमान भी कहते हैं। कहाँ लिखा है आपने जुमला लोगों से, किधर लिखा है, लाओ दिखाओ मुझे, मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा। भाई आपने क्या क्या पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो नहीं, बस अखबार ही पढ़ता हूँ। तो फिर आपको क्या पता अल्लाह ने कहाँ कहा है? कुरान के बारे में भी बाज़ लोग कहते हैं नहीं, हमें खुद डायरेक्ट बात पता चलेगी तो मानेंगे, वरना हम नहीं मानते, हदीस में नहीं मानते। इसी में इनकार हदीस है, हम हदीस को नहीं मानते। तो अल्लाह ताला कहते हैं असल में इनके दिलों में अपनी बड़ाई बढ़ी हुई है, इसलिए ऐसी बातें। और आगे आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह सूरह फुरकान में, इस पर बड़ी डिटेल से बात होगी कि अल्लाह के नबी के ऊपर बातें घड़ते थे। वकालु माली हाजर रसूल याकुलु ताम, ये कैसा रसूल है, खाने भी खाता है, बाजारों में भी फिरता है, कोई फरिश्ता आता है इसके साथ तो फिर मजा आता। अल्लाह ताला कहते हैं तुम ऐसी बातें ना करो। देखिए, आपके बच्चे के भूख नहीं होती ना उसको, तो आप जो चीज बनाएंगे ना वो नहीं खाएगा, बहाना डाल देगा, ये भाई ने क्यों पकड़ा, ये आपने इधर से क्यों पकड़ा, ये कच्चा अंडा रह गया, ये सर्दी क्यों पक गई, ये क्यों होगा। आप मान लीजिए उसको तलब नहीं है। आज किसी को बताएं कि हमारा कोर्स शुरू हो रहा है शाम को दोबारा, अच्छा आप उन्हें अपने कोर्स की दावत दें, नहीं सुबह तो काम करती हूँ, अच्छा शाम को आ जाए, नहीं फिर काम से थके होते हैं ना, अच्छा फिर ठीक है वीकेंड पे आ जाए, वीकेंड पे भी है? नहीं फिर 2 दिन तो मिलते हैं, तलब नहीं है। ये जो हीले बहाने करे उससे पहले ही अपना फ्लायर वापस रख ले, पहले तलब जगाए। जिसको दीन की दावत देते हैं आप, पहले उसके दिल में तलब पैदा करें। और इनके ये मुतालबे के अल्लाह ताला हम पे उतारे, ये सूरत बनी इसराइल में आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बात बोझल होती है इसलिए रेफरेंसेस कम से कम करती हूँ, लेकिन खुलासा क्या है, तीनों गिरोहों को शुरू से डिस्कस किया जा रहा है, यहूद नसारा और मशरिकीन मक्का, तशाबहत कुलूबहुम। इन सब के रिचुअल्स रेशियोज मिलते ही हैं, हेलोवीन इनकी एक जैसी और खाने पीने इनके एक जैसे, पहनने ओढ़ने एक जैसे हैं। मुसलमानों तुम फिक्र करो, आखिरी टॉपिक जो बहुत स्ट्रांग है, इस टॉपिक का जो आखिरी भी है वो आगे आने वाला है। फरमाए नारसलना कबिल हक, मत के मैं इधर एक जुमला लिखा दूं ना, ओ मुस्लिम्स डोंट लूज योर आइडेंटिटी। ये तीनों एक जैसे, इनको करने दो, ये उनकी क्रिसमस मना लें, वो उनकी होली मना लें, कोई बात नहीं, इट्स फाइन। वो कहते ना अल कुफ्रु मिल्लत वाहिद, सारा ही कुफर जो है वो एक ही मिल्लत होती, पर मुसलमानों तुम देखो तुम्हारी निस्बत किससे है, किससे, इन नरसलना कबिल हक, ए नबी हमने आपको हक के साथ भेजा, बशीरा व नजीरा, खुशखबरियां देने वाला और डराने वाला बनाकर। पहले क्या लफ्ज आया, फिर नजीर, तबलीग का नुकता है, पहले लोगों को उम्मीदें दिलाएं, बच्चों को हमेशा पहले अल्लाह की मोहब्बत दें, जन्नत की बातें बताएं, छोटे बच्चों को कभी जहन्नुम की बात नहीं करनी चाहिए वरना वो बड़े होने तक सुन सुन के सुन हो जाएंगे। बच्चों से तो कभी जहन्नुम की बात ही ना करें, जब तक अल्लाह ने उनको माफ रखा है, आपको तक के बच्चों के तो अमल भी नहीं लिखे जा रहे होते, तो आप भी उनको जहन्नुम की बातें ना सुनाएं। बशीर बशारते, बेटा यू डू दिस अल्लाह विल गिव दिस, ये करोगे ये मिलेगा। फिर जब वो बड़े होके भी जरा मस्ती करें तो फिर नजीर वाली बात है कि गलत करोगे तो पकड़ना भी आता है उसको। वला तुसल वनसखाबिल जहीम, और आपसे अहले दोजख के बारे में नहीं पूछा जाएगा। तो पहली बात देखिए कि यहाँ नबी सल्लम का अब तस्करा आ गया। इन तीनों फिरकों का बड़ा मसला नबी सल्लम थे, तो यहाँ आपका मुकाम बता दिया गया कि आप लोगों तक अल्लाह का पैगाम देने वाले हैं, आप अपनी मर्जी से कोई शरीयत नहीं बनाते। बस कहते हैं कि यहाँ का से मुराद बिलहक में क्या है, मुराद कुरान भी है और इस्लाम भी है, तीन ही बातें ठीक है, कि जो मोहम्मद सल्लम ने कहा वही कुरान में था, वही इस्लाम है, तो कुरान सुन्नत ही मुराद है। कुरान भी बिशारतें देता है, नबी सल्लम ने भी दी, कुरान भी डराता है जहन्नुम से, अल्लाह के नबी ने भी डरा दिया। और इसी तरह बाद के मुबल्लिगीन भी बशीरन व नजीरन में आते हैं कि जो लोगों को जन्नत की खुशखबरियां देते और जहन्नुम से डराते हैं। हजरत इब्ने अब्बास कहते हैं कि जब ये आयत नाजिल हुई तो नबी सल्लम कोहे सफा पर चढ़ गई, इमेजिन करें आप, कोहे सफा पे गए, फिर बतूने कुरैश को आवाजें लगानी शुरू की, ऐ बनी फहर, ऐ बनी अदी, यहाँ तक कि सब इकट्ठे हो गए, पता नहीं क्या हो गया। जब सब खुद ना आ सके तो अपना कोई बंदा भेज दिया कि जाओ सुन के आओ बात क्या हो रही है। तो आपने कहा अगर मैं तुमसे कहूं कि इस वादी के पीछे से दुश्मनों की फौज आ रही है तो मानोगे? सबने कहा मानेंगे। कहा अच्छा फिर तुम्हें इससे भी सच्ची बात बताऊं, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह एक है, उसकी मानो वरना फंस जाओगे। तो उस वक्त फिर अबू लहब ने आपकी तौहीन की कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तूने इसलिए हमें बुलाया था, जा तेरे हाथ, और जो भी उसने कहा। तो उस पर सूरह लहब नाजिल हुई थी कि तब्बत यदा अबी लहब व तब। ये सारी वो आयतें हैं कि जिसमें अल्लाह के नबी को अल्लाह ने काम दिया। और आप देखिए तीन काम दिए ना, बशीर, नज़ीर, अल्लाह के नबी सल्लम की रिसालत की बात है, आपकी सीरत, आपका तरीका, आपका दीन की तरफ बुलाना, और कुरान और सुन्नत की मार्फत को लेना। दुआ करें कि हम भी लोगों के लिए बशीर और नज़ीर ही बन जाएं। और जब तक नबी सल्लम वाला तरीका इख्तियार नहीं करेंगे, बात नहीं बनेगी। और ये बात क्यों कह दी गई कि आपसे दोजख वालों के बारे में नहीं पूछा जाएगा? इसलिए देखिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप मेरी बात सुन के कितने नोट्स ले रहे हैं, कितने नहीं ले रहे, कितनों को ये बातें याद रहेंगी, कितको नहीं, मुझे से क्या लगे? मेरा काम क्या था कि मैं आप तक हक पहुंचा दूं। तो याद रखिएगा, जब हम ये जिम्मेदारी ले लेते हैं कि हमने मनवाना है, तो बहुत गड़बड़ होती है। मसला आप देखिए कि मैं आपसे कहूं कि मैंने आप सबको बात मनवानी है, तो फिर मैं बात को नरम करूंगी, चलो सब मान ले, ये कर लो, रूल्स तोड़ लें लेकिन सब मान ले तो ठीक है। इस्लाम का मिजाज क्या है कि हक बयान कर दो नरम आवाज से। गड़बड़ क्या हम करते हैं कि आवाज सख्त और हक को वो ब्लेंडर में डाल के ना तो उसकी स्मूदी बना के पेश करते हैं, ये दुरुस्त नहीं है। आवाज नरम, बात सख्त, फॉर्म, ये हक को मनाने का कि असूलों को नहीं छोड़ना, नबी के तरीके नहीं छोड़ने के 1400 साल पहले ये था, आज नहीं, आज सूद के बगैर गुजारा नहीं हो सकता, आज शराब पीनी पड़ती, आज ये कपड़े पहनने पड़ते हैं, आज बच्चे नमाज कैसे पढ़ें, अब सर्दियों में कैसे वजू करें, नहीं, हक वो है लेकिन बात अच्छी करें। क्योंकि अगली आयत की ग्राउंड है ना, जब आखिरी टॉपिक है कि मुसलमानों को सिखा दिया तुमने अल्लाह को खुश करना है, पीपल प्लीजर नहीं बनना। जब मुसलमान ये चाहते हैं ना कि यहूद नसारा और सारे हमसे खुश रहें, तो फिर दीन बदलता है, जैसे आज बहुत सारे मुसलमानों ने बदला। हमारे मुसलमान मुल्क पूरे के पूरे बदल गए, फिर भी किसी ने उनको यूरोपियन यूनियन में नहीं डाला आज तक। क्या कुछ कर दिया उन्होंने। इसीलिए अगली आयत को जरा सी तवज्जो से सुनिएगा, वलन तरदान कल यहूद वलन नसारा, और हरगिज नहीं राजी होंगे आपसे यहूद और नसारा। नेवर, डोंट हैव द होप। अल्लाह ने उम्मीदों पर उस डाल दी कि Jews and Christian will not be happy, will not be pleased with you. नहीं खुश हो सकते, मत कोशिश करो। टांगे नंगी कर ली वो खुश नहीं हुए, स्काफ उतार दिए वो खुश नहीं हुए, कंधे से कंधा मिला के करा नहीं खुश हुए, औरतों को काउंटर्स पे खड़ा कर दिया वो खुश नहीं हुए, मस्जिदों की रूहानियत खत्म होगी नहीं हुए। तो भाई हम पूछते हैं अल्लाह कोई एक तरीका तो होगा ना, का एक है, हद तबिया मिलता हूँ, तुम उनके तरीकों पर चलो। यहाँ मिल्लत लफ्ज से बस सारी बात समझ आ जाएगी, आगे दीन और मजहब आएगा वहां सिखाऊंगी, यहाँ मिल्लत समझ लीजिए लाइफस्टाइल। एक तरीका है मुसलमानों का उनको खुश करने का, उनका लाइफस्टाइल इख्तियार करें, कपड़े उन जैसे पहने, शादियां उन जैसी हों, लिविंग टुगेदर उन जैसा हो, घर उनकी तरह रखें, और हर काम में उनको देखें, फिर वो बहुत खुश हैं, फिर खुश होंगे। आप देख लीजिए वैलेंटाइन मना ली वो नहीं खुश हुए, क्रिसमस मनाई नहीं खुश हुए, मोमबत्तियां लगा ली वो खुश नहीं हुए। वो तो आपकी तरह कोई नहीं आके कुर्बानी करते आपके साथ, वो तो ईद की नमाज आपके साथ कोई नहीं पढ़ते, आप कंधे से कंधा मिला के उनकी तरफ आ रहे हैं, एड़ियां उछाल उछाल के अपने कद उनके बराबर करें, उनको तो कोई शौक नहीं आपसे मिलने का। इसलिए कहा कि वो खुश होने नहीं है तो ना करो। कुल इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा, ये जुमला बड़ा खूबसूरत है। जब कभी तुम्हें कोई किसी की बात इस्लाम के किसी असूल से टकराती भी दिखे तो ये जुमला बोल दो, बेशक हिदायत तो अल्लाह की है, वही हिदायत देने वाला, गाइडेंस इज फ्रॉम अल्लाह। जब हमें नॉन मुस्लिम्स डिक्टेट करते हैं ना, ये दीन लोगों को सिखाना, ये बात बताना, ये ना बताना, तो वो दीन नहीं रहता, वो कुछ और बन जाता है। वलैन तबात अहवाहुम, और अगर आपने पैरवी की इनकी ख्वाहिशों की, फिर देखिए लफ्ज अहवा, झूठी ख्वाहिशें, बाद अल्लज़ी जाअका मिनल इल्म, इसके बाद के आपके पास इल्म आ गया, मालका मिनल्लाहि मिन वलीय वला नसीर, तो फिर अल्लाह से आपको ना तो कोई मदद देने वाला होगा और ना कोई दोस्त होगा। क्या बताया, खबर दे दी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए आज पूरी उम्मत को, पहली बात है ये दो मुख्तलिफ कल्ट हैं, इनको आप अपने साथ मिला नहीं सकते क्योंकि वो खुद अपने आप को हक पे समझते हैं, खुद खुश हैं, तो फिर आप उनको खुश कर नहीं सकते। आपको अल्लाह की खुशी मकसूद होनी चाहिए। दूसरी बात है कि जब दीन में ख्वाहिशात शामिल हो जाती हैं तो फिर कोई हद नहीं रहती। आप देखिए, आप सादा दूध बच्चे को दें और वो ना पिए तो आप कहते हैं अच्छा चलो चीनी डाल दो, कल 2 दिन बाद उसका इनकार करेगा। फिर आप कहते हैं अच्छा चॉकलेट डाल दो, फिर अगले दिन वो कहेगा नहीं अब इसमें मुझे आइसक्रीम डाल दें। उसके मुतालबे बढ़ते ही जाएंगे। आपको सीधा सादा दूध पीना है तो पीना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह जब आप किसी की एक गलत बात मानते हैं ना तो दूसरी भी माननी पड़ती है, और ये बहुत बड़ी वईद है ऐसे मुसलमानों के लिए कि जिनका आज अपना रंग बिल्कुल ही बदल गया है। वो कहते हैं यहां रह कर ये नहीं करना, कौन कहता है यहां रहे, अगर जरूरत नहीं है तो फिर काम करें अपना। हसद है ना दिल में, सवाल पैदा होता है वो आपसे क्यों नहीं खुश होते, हासिद है, हासिद आपसे कभी खुश नहीं होगा। जरूरत है इस बात की कि आज हम अपनी फिक्र करें। इस हिदायत के सोर्स को पकड़ लेंगे बात बन जाएगी, और अगर छोड़ा, ये आयत आज मुसलमानों के मुंह पे तमाचा है, आज अल्लाह भी नहीं लगता हमारी सुनता है, क्योंकि तुमने दूसरों को रब बनाना चाहा, उनसे मदद मांगते हो, जाओ फिर अपनी बात करो, उनसे मांग लो, मैं तुम्हें नहीं देता। सही मुस्लिम की रिवायत नोट कर लीजिए, हजरत अबू हुरैरा से है, फरमाया कि उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है कि इस उम्मत का कोई भी यहूदी हो या ईसाई मेरी बात सुने, यानी शरीयत जो मेरे साथ आई, उसको पता चल जाए कि मैं आ गया हूं, फिर भी वो ईमान ना लाए तो इसका ठिकाना जहन्नम वालों में से है। अल्लाह ताला आपको मुझे बचा के रखे। ये वो चीजें हैं कि जो एक इंसान को अपनी फिक्र लगाती हैं। आखिरी आयत अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहू हक्क तिलावती, ये वो लोग हैं जिनको किताब दी गई, वो इसको ऐसे पढ़ते हैं जैसे इसकी तिलावत का हक है। पूरा रुकू ऐसे लग रहा है अगेंस्ट था, लग रहा है इनमें कोई भी नहीं अच्छा, यहाँ उन लोगों की तारीफ है जो अहले किताब के भी अच्छे लोग हैं, अब्दुल्ला बिन सलाम जैसे लोग जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। का जब ये कुरान पढ़ते हैं तो उसकी तिलावत का हक अदा करते हैं, उलाइका युमिनूना बिही, ये लोग उस पर ईमान भी लाते हैं, वमै यकफुर बिही फौलाइका हुमुल खासिरून, जो इसका कुफर करते हैं वो खसारे वाला है। क्या पता चला कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि इस्लाम सच्चा मजहब है, लेकिन लोग लोगों के डर से छोड़ देते हैं। पीछे मैंने वाक्य सुनाया ना आपको अब्दुल्ला बिन सलाम का, कि पहले यहूद उनकी तारीफें कर रहे थे, जब उनको पता चला कि इन्होंने इस्लाम कबूल किया तो इनके खिलाफ हो गए। तो क्या पता चला इस आयत में मुझे और आपको, कुरान को जब भी पढ़ें तो इसकी तिलावत का हक अदा करें। कैसे? सवाल पैदा होता है कि कुरान की तिलावत या किताब की तिलावत का हक क्या है? तो पहली बात उस तिलावत को समझिए, तला यतलू तिलवन, पीछा करना, टू चेस के मानों में इंग्लिश में, लफ्जों के पीछे मानी लिखें, ये जुमला लिखेंगे तो बात बहुत समझ आएगी इंशाल्लाह। लफ्जों के पीछे मानी, और मानी के पीछे गौर व फिक्र, और गौर व फिक्र के पीछे अमल को लगा दो। दोबारा बोलती हूँ, लफ्जों के पीछे मानी, यानी जब कुरान के लफ्ज पढ़े, अभी आप तिलावत पढ़े करेंगे या सुनेंगे तो आपके दिमाग में मानी भी चल रहे हो, तो जब मानी पे गौर करने लग जाए तो साथ ही गौर व फिक्र शुरू हो जाए, इन नफी खल्के समावाती वलर्द, और गौर व फिक्र का नतीजा अमल करें। यह है कुरान की तिलावत का हक। अच्छे तरीके से पढ़ना, हर आयत पे रुकना, जन्नत की आयतों पे जन्नत मांगना, जहन्नुम की आयतों पे पनाह मांगना, ये भी आयतों का हक है। फिर नेक्स्ट हक है अल्लाह के हलाल ठहराए हुए को हलाल करार देना और हराम को हराम करना। फिर नेक्स्ट इसका हक है कि हुक्म वाली आयतें यानी मुहकमात पर अमल करें, और मुतशाबेहात यानी शुबे वाली आयतों पर ईमान ले आए। फिर इसी तरह से रुक रुक के पढ़ना, आहिस्ता से पढ़ना, तरतील के साथ पढ़ना। कुरान पढ़ते वक्त ऐसे लगे कि हम जन्नत के बागों में सैर कर रहे हैं, वलाइका युमिनूना बिही, फिर वो उस पर ईमान लाते हैं। अल्लाह हमें ऐसा ईमान लाने वाला बना दे। कुरान पढ़े तो दिल के ऊपर उतरे। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कुछ लोग हैं जो अल्लाह के घरों में किसी घर में जमा होते हैं, जैसे इस वक्त आप भी जमा हुए हैं, फिर अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं। कौन सी तिलावत? जो आपने की, पहले तिलावत, फिर लफ्जी तर्जमा, फिर वा मुहावरा, फिर तफसीर, अब अमल की कोशिशें, फिर एक दूसरे को पढ़ाते हैं। इन पर सकीनत नाजिल होती है और रहमत इलाही इन्हें अपनी आगोश में ले लेती है। पता नहीं आपने महसूस की कि नहीं, मुझे तो महसूस होती है। और फरिश्ते इन पर साया फगन हो जाते हैं और अल्लाह इनका तज़किरा अपने पास मौजूद मखलूक में करता है। कौन है वो फरिश्ते? ये सही मुस्लिम की रिवायत है 6853 नंबर की। तो आप तो इस वक्त जमीन के इस टुकड़े पे बैठे हैं, कुर्सियों पे बैठे, थक चुके हैं ना, वो अल्लाह ही आपका तज़किरा अगर अल्लाह आसमानों में इस वक्त कर रहा हो तो क्या चाहिए और इससे बढ़ के। इब्ने उमर की रिवायत है कि नबी सल्लम ने फरमाया कि रोजा और कुरान क्यामत के दिन बंदे की सिफारिश करेंगे। रोजा कहेगा कि रब मैंने इसे दिन के वक्त से खाने से और पीने से रोका, और फरमाया कि कुरान कहेगा कि मैंने रात को इसको नींद से रोका था, मेरी सिफारिश कबूल फरमा, और फिर दोनों की सिफारिश कबूल कर ली जाएगी। तो इस वक्त हम भी कहते हैं अल्लाह हम रोजे से भी हैं और हमने कुरान भी अपनी इस्तेताद के मुताबिक पढ़ा, तो हम इसके हक में सिफारिश कबूल कर लें। एक और हदीस में आता है कि कुरान पढ़ने वाले को कहा जाएगा पढ़ता जा और चढ़ता जा, तरतील के साथ पढ़ जैसे दुनिया में पढ़ता था, आखिरी ठिकाना वो है जहां तक तू तिलावत करता था। अबू दाऊद की रिवायत है, अबू मूसा अलैहिश्शरी की रिवायत है। आप गौर से सुनिएगा ये क्या रिवायत है कि नबी सल्लम ने फरमाया कि मोमिन की मिसाल जो कुरान की तिलावत करता है मोमिन और कुरान की भी तिलावत करता है। आप कहते हैं ना कुछ लोगों को शौक होता है हर वक्त कुरान पढ़ते रहते हैं, उसकी मिसाल संतरे की है। संतरा आप यहाँ क्या कहते हैं, क्लेमेंटो, वही जो भी आप कहते हैं, संतरे की सी है जिसका मजा भी लजीज होता है और खुशबू भी बेहतरीन है और रंग भी अच्छा होता है ना उसका। और वो मोमिन जो कुरान की तिलावत नहीं करता यानी कम कुरान पढ़ता है, मोमिन कुरान कम पढ़ता है, इसकी मिसाल खजूर की सी है कि मजा तो उम्दा है पर खुशबू नहीं है, रंग भी काला है। और बदकार यानी मुनाफिक भी कभी कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह हमें उनमें ना करे। तो मुनाफिक की मिसाल है जो कुरान की तिलावत करता है रेहान की है कि इसकी खुशबू तो अच्छी है पर मजा कड़वा होता है। और उस बदकार की मिसाल यानी जो बहुत ही वर्स्ट है, कुरान भी पढ़ता है और बुरे काम भी नहीं छोड़ता, अंदराइन, अल्लाह अकबर, जो कड़वी भी है और खुशबू भी नहीं। ये बुखारी की रिवायत है। तो संतरा बनना, खजूर बनना, रेहान बनना या अंदराइन बनना, ये मेरे आपके लिए है। अल्लाह ताला आपको मुझे हिदायत दे। अबू मूसा की एक और रिवायत है, कुरान पाक की तबाह करने वाला जन्नत के बागीचों में उतरने वाला है। तो अल्लाह ताला हमें बेहतरीन तरीके से रखे। अगर ये नहीं है तो फरमाया वमन यकफुर बिही फाउलाइका हुमुल खासिरून, ये नहीं करोगे तो फिर खासिरीन हो, अक्सर बैंकरप्ट हो, सारी जिंदगी के बाद जब अल्लाह के पास पहुंचोगे तो कुछ भी नहीं होगा, जिंदगी खत्म हो जाएगी, आपको मुझे नहीं पता कि आपने मैंने कहाँ जाके रुक जाना है, चलती चलती घड़ी की तरह सुइयां रुक जाएंगी। कल मैंने आपको जो सबक पढ़ाया था उस वक्त तक मेरी एक मुमानी थी, आज वो नहीं है। आप में से जो ग्रुप में आपने सुन लिया होगा, यानी वो नहीं है यंग, और मैंने रात सुना मैसेज अचानक के, खाना खाया है और आराम किया, लेटनी है कुछ गर्दन में, इधर वो एक थोड़ी सी नहीं होती जो क्या बोलते हैं लोग, गर्दन की एक तकलीफ होती है, कोई थायराइड का प्रॉब्लम था तो कोई गोली खाई है तो लेटी हैं, और माँ पास थी तो उनको थोड़ी देर बाद लगे थे ऐसे होंठ नीले हुए हैं, तो वो शायद सांस नहीं आया, कोई पता भी नहीं किसी को, अभी लेट के और उनको खुद नहीं पता ये मेरा आखिरी खाना है, और छोटे बच्चे। तो मैं ये सोचती हूँ कि हमारी गाड़ी की चाबी कब रुकनी है किसको पता, जो वक्त है आज इसको मोहलत ले लें। वल्लाही वो इब्तदाई एडमिन्स में से थी जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन पे ये नूरुल कुरान के रूम्स में सारा सारा दिन वो प्ले करती थी, अमेरिका में होती थी या पाकिस्तान में मूव हो गए हुए थे, तो अल्लाह के पास छोटे बच्चों को छोड़ के चली गई। तो कभी ना अपने आप को ढीला छोड़े, कल कर लूंगी फिर देखूंगी। मैं तो कहती हूँ अल्लाह आखिरी लम्हे तक ले काम, आखिरी दिन तक काम ले, सांस आखिरी भी तेरे रास्तों में निकले, क्योंकि यही इस किताब का हक है, यतलू ना हो हक का तिलावती। तो क्या सीखा इस सबक से, खुलासा लिख लीजिए, अल्लाह की इस किताब का हक अदा करना है। और इस पूरे सबक में जो हमें अपने लिए अमल के नुक्ते मिले, नंबर एक किताब पढ़ने का हक अदा करना, अल्लाह की किताब पर सच्चे दिल से ईमान लाना, और खराब काम ज्यादा देखे, कौन से, दूसरों को हक पे ना समझना, अल्लाह की इबादत में अल्लाह की याद से रोकना, इबादत खानों को, इबादत गाहों को वीरान करना, किताब के साथ कुफर करना। और पूरे सबक में आप देख लीजिए कि दीनदारों पे तनकीद थी, गलत फहमियों की वजाहत है, एतराजात का जवाब है कि तुम्हारे इख्तलाफात अब आखिरत में जाके खुलेंगे, तुमने दुनिया में मानना नहीं है। और मैं आपको सच बताऊं कि बिल्कुल हिदायत से बिगड़ा व शराबी कबाबी बंदा कुरान पढ़े ना, वो बदल जाता है। पहले से कुरान पढ़ा हुआ नहीं बदलता, जिसने एक खास रंग से पढ़ा हो, क्योंकि उसको पता है मैं आलिम हूं। दीन वाले नहीं मानते, दुनिया वाले बेचारे मान जाते हैं। और मस्जिदों से रोकने वाले ही जालिम है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपके मेरे लिए आसान करे अमल करना। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक।
وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون